आरवी अयांश से अपनी नजरें हटाती है और वापस उसके हाथ की तरफ देखती है। आरवी ने अयांश की हथेली अपने हाथ में रखी और दूजे हाथ से उसमें चुभा कांच के टुकड़े निकालने लगी। गिलास पानी पीने के लिए दिया था आपको मिस्टर मेहरा, हाथ में चुभाने को नहीं। क्या है ये, गिलास हाथ में तोड़ लिया? अयांश के हाथ में कांच के दो तीन टुकड़े चुभे हुए थे। आरवी ने हाथ पर फूंक मारते हुए आहिस्ता आहिस्ता उन टुकड़ों को निकाला। अयांश की नज़र अभी भी उस पर थी। एक बार भी उसने अपनी चोट की तरफ ना देखा, ना ही कोई उफ की। उसके चेहरे से भी पता नहीं चल रहा था कि उसे इस चोट का दर्द है भी या नहीं। शायद अयांश के मन में आज जो दर्द था, उस दर्द के आगे अभी लगी चोट का दर्द छोटा पड़ गया हो। पर आरवी के चेहरे का रंग उसकी हाथ पर लगी चोट और बहते खून को देख उड़ चुका था। आरवी के चेहरे से साफ पता चल रहा था अयांश के हाथ में लगी चोट उसे अच्छी नहीं लग रही, उसे तकलीफ हो रही है। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। क्यों, ये तो आरवी ही जाने। वो डॉक्टर थी इसलिए, या कुछ और ही वजह थी, प्रोफेशन के चलते कहें या इमोशन के चलते, पर इस वक्त वो अयांश के लिए परवाह तो दिखा रही थी। कांच के टुकड़े निकाल आरवी ने पानी का जग उठाया और उसमें अयांश का हाथ डाल दिया। हाथ डाल आरवी ने अयांश की तरफ देखा, जो अभी भी उसे ही देख रहा था। ये देख आरवी चिढ़ गई और उस पर गुस्सा होते बोली, आपका दिमाग काम करना बंद कर गया है क्या मिस्टर मेहरा? हद होती है, खुद पर ध्यान दीजिए। आपका ध्यान कहाँ है? आपने क्या बेवकूफ़ी की है आपको पता भी है? शुक्र मनाइए ज़्यादा टुकड़े ना चुभे, पर जितने भी चुभे हैं घायल हो चुका है आपका हाथ, खून बह रहा है, पर आपको तो ना अंदाज़ा ना ही होश, पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए हैं। आप सुन भी रहे हैं जो मैं कह रही हूँ? कैसे बेदर्द इंसान हैं आप, कभी तो नॉर्मल इंसानों जैसे रिएक्ट किया कीजिए। आपकी स्ट्रांग पर्सनैलिटी में कमी ना आएगी, ना ही आपको कोई कमज़ोर कहेगा। मुझे तो समझ नहीं आता, ना में सिर हिलाते हुए, आपको दर्द होता भी है या नहीं? तभी अयांश बोल पड़ा, होता है मुझे भी दर्द। रियली? पर आपकी हरकतें देखकर तो नहीं लगता आपको दर्द होता है, ना ही आपको देख पता चल रहा कि आपको अभी अभी ये जो चोट लगी है, जग से हाथ निकाला अयांश के सामने करते हुए, इसका दर्द हो भी रहा है? अगर चोट इससे बड़ी और दर्द इस दर्द से बड़ा हो तो, अयांश अपने हाथ की तरफ देखते बोला, तो उस बड़ी चोट बड़े दर्द का भी इलाज है, उस पर भी मरहम लगाइए जैसे अब इस पर लगाएंगे और इस चोट का इलाज करेंगे। आइए, कह आरवी ने अयांश को बेड पर बिठा दिया और जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई और उसे खोलकर बेड पर रखा और उसमें से कॉटन और एंटीसेप्टिक क्रीम निकाली और अयांश के पैरों के पास नीचे घुटने जमीन पर टेक बैठ गई। लाइए, हाथ दीजिए। पर अयांश हाथ देने की बजाय वहां से उठने लगा कि आरवी ने उसे कंधे से धकेल वापस बेड पर बिठा दिया। कहाँ? और उसका हाथ पकड़ते हुए, मैं यहाँ किस लिए बैठी हूँ? आपके चरण छूने? नहीं ना, ड्रेसिंग के लिए, इस हाथ की, जो कि जरूरी है। चुपचाप बैठे रहिए, वैसे भी चुपचाप ही हैं, बस टिक कर बैठे रहिए थोड़ी देर यहाँ, हमें ड्रेसिंग करने दीजिए आपके हाथ की, हिलने का सोचिएगा भी मत, बिना दवाई लगवाए तो हम आपको जाने नहीं देंगे। कहते आरवी ने कॉटन पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर अयांश के घावों पर लगाने लगी। अयांश उसे देख रहा था, वो उसके हाथ पर फूंकते हुए बड़े ही अच्छे से दवा लगा रही थी। हाथ के दर्द पर तो मरहम लग रहा था, पर मन के दर्द का क्या, उस पर भी मरहम की जरूरत थी। आराम तो तभी आएगा ना, तकलीफ पूरी तरह तभी जाएगी ना जब वो दर्द भी दूर होगा। तभी अयांश आरवी को ताकते बोला, तुम कहाँ गई थी? आरवी उसकी तरफ एक नज़र देखते हुए, क्या मतलब? मुझे सेम बात दोहराने की आदत नहीं है, कहाँ गई थी? इट्स मीन मैं पूछ रहा हूँ, तुम कहाँ गई थी? अयांश ने गुस्से से कहा। ये सुन आरवी बिना उसकी तरफ देखे नामे सिर हिलाती है, जब बताकर गए थे तो फिर सवाल करने की क्या जरूरत है? कहा था ना, फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। फ्रेंड? कौन सी या कौन सा? ये सुन आरवी की भौहें सिकुड़ गई वो अयांश की तरफ देखते हुए। कौन सी? ये सुनते ही अयांश ने अपना हाथ झटकाकर छुड़ा लिया और बेड से भी उठकर जाने लगा। तभी आरवी ने उसकी कलाई पकड़ ली। आरवी नीचे से उठी और अयांश के सामने आकर उसे फिर बेड पर धकेल दिया, जिससे वो फिर बेड पर जा बैठा। वो आरवी की तरफ घूर कर देखता है तो आरवी उसकी ओर देखते बोली, कहा था ना हिलना मत, ड्रेसिंग बाकी है अभी, बिना मरहम पट्टी के तो आप यहाँ से जाने से रहे मिस्टर मेहरा। इतना कह आरवी अयांश का हाथ कसकर अपने हाथ में पकड़ बेड पर बैठ गई और एक हाथ से फर्स्ट एड बॉक्स को टटोलने लगी। तभी अयांश अपना हाथ छुड़ा लेता है। आरवी उसे घूरती है पर कहती कुछ नहीं, क्योंकि वो अभी भी बेड पर बैठा था, बस नजरें दूसरी तरफ घुमा ली थी। ये देख आरवी बॉक्स से पट्टी निकाल उसे कैंची से कट करते हुए बोली, आप हम पर गुस्सा है मिस्टर मेहरा? अयांश कुछ नहीं बोला तो आरवी उसका हाथ अपनी तरफ कर उस पर पट्टी बांधते हुए, आप हमसे नाराज क्यों हैं मिस्टर मेहरा? और वो नाराजगी मुझ पर उतारने की बजाय खाने पर और खुद पर क्यों उतार रहे हैं? तभी अयांश बिना उसकी तरफ देखे बोला, तुम गार्डन में जिसके साथ थी, जो तुम्हारे पास, अपनी आंखें मूंदते हुए, साथ था वहां जिसने तुम्हारी आंखों पर अपने हाथ रख रखे थे, वो फ्रेंड? कौन सी? इस लफ्ज़ पर जोर देते हुए, थी क्या? अयांश की बात सुन आरवी समझ गई कि अयांश किस बारे में बात कर रहा है।
उसने क्या और किसके साथ उसे देखा था, पर वो कुछ ना बोली, बस अयांज के हाथ पर पट्टी करने में लगी रही। आरवी को बोलता ना पाकर अयांज ने उसकी तरफ देखा। बताओ वो फ्रेंड कौन सा था या कौन सी? जब देख कर आए हैं खुदा, कौन था मेरे साथ? फिर सवाल करने का क्या मतलब मिस्टर मेहरा? आरवी बिना अयांज की तरफ देखे बोली, जो पूछा है जवाब दो, क्योंकि जो मैंने देखा वहां मुझे कौन सा ही दिखा, और तुम अभी भी कह रही हो कौन सी थी जिसे तुम मिलने गई थी। अयांश उसे खोरते दांत भींचते हुए बोला। ये सुन आरवी उसे एक नजर देख मुस्कुरा दी। आपने कौन सा देखा कौन सी नहीं, तो फिर ठीक है मिस्टर मेहरा, कौन सा था मेरे साथ? तुमने झूठ कहा मुझसे, अयांश सर्द भरी आवाज में बोला। उसकी आवाज से गुस्से के साथ दर्द भी साफ छलक रहा था। तभी ये आपको लगता है कि मैंने आपसे झूठ कहा? इतना कह आरवी ने उसका हाथ उसके घुटने पर छोड़ दिया। आरवी बॉक्स बंद करने लगी। अयांश फौहे से कूड़े उसे देख रहा था, मानो उसे आरवी के बोलने का इंतजार हो। तभी आरवी बेड पर पलाथी लगाकर बैठ गई और बेड पर पड़ा पिलो के पास पड़ा अपना फोन हाथ बढ़ाकर उठाया। उसमें जिया की फोटो निकाल अयांश के सामने करते हुए बोली, जिया? और फिर उसी फोटो को खुद आरवी ने देखा और चूमकर फोन बंद कर वापस बेड पर फेंक दिया। अयांश उसे हैरानी से देख रहा था। तभी आरवी मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख बोली, जिया मेरी नई फ्रेंड, छोटू सी प्यारी सी, कुछ ही दिन हुए हैं, हॉस्पिटल में मिले थे और हमारी दोस्ती हो गई, और हम आज कौन सी फ्रेंड से मिलने गए थे ना, वो यहीं थी। अब लड़की है तो कौन सी हुई ना, पहले मैं रॉयल रेस्टोरेंट गई, वहां हमने थोड़ा कुछ खाया पिया और फिर वहां से निकल गए, क्योंकि वहां का माहौल बच्चे के लिए, जिया के लिए सही नहीं था। हम वहां से उसी रेस्टोरेंट के पास के एक गार्डन में चले आए, जहां गेम खेले, झूले लिए और खूब इंजॉय किया, मैं, जिया और जिया के चाचू ने। अब जिया बच्ची है, अकेली तो आ नहीं सकती, तो अपने चाचू के साथ आई थी। जब भी हम मिलना चाहते हैं तो जिया के चाचू उसे ले आते हैं और हमें मिलवा देते हैं। जैसे मेरी लाइफ में मेरे चाचू इंपॉर्टेंट है, वैसे ही जिया की लाइफ में उसके चाचू, उसके पेरेंट्स नहीं है, मुझ जैसी ही है, क्यूट एंड स्वीट, इतराकर मुस्कुराते हुए।
तो जिया को जब भी मुझसे मिलना होता है वो अपने चाचू के साथ आती है। मेरी जिया की मुलाकात में उसके प्यारे से चाचू भी होते हैं। आज भी वैसा ही हुआ। फिर हम गार्डन में छुपम छुपाई खेलने लगे। कहते आरवी ने अयांश को फिर बात की कहानी बताई। उसने संयम को सिर्फ जिया का चाचू कहकर ही बताया, क्योंकि आरवी के लिए वो सिर्फ जिया का चाचू ही था। ज्यों ज्यों आरवी बता रही थी कि क्यों संयम जिया के चाचू ने उसके आंखों में अपने हाथ रखे, त्यों त्यों अयांश के दूसरे हाथ की मुट्ठी बेड सीट पर भींची जा रही थी। इतना ही नहीं, अयांश ने अपनी आंखें बंद कर चोट वाले हाथ की भी मुट्ठी बनानी चाही, क्योंकि गुस्सा तो वो अभी भी था, पर शायद आरवी पर ना होकर खुद पर। जैसे ही आरवी ने अयांश के दूसरे हाथ की तरफ चेहरा उठाकर देखा, जिसमें अयांश ने बेड सीट को भींचा होता है, और फिर दूसरे हाथ को, जिसकी मुट्ठी बांधने की फिराक में था, तभी आरवी ने उसका हाथ पकड़ रोक लिया। नहीं मिस्टर मेहरा, क्रमशः।